नहीं जाता। देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर बैकुंठ से थोड़ी दूर पर अयोध्या है। ये तो अधूरे अयोध्या, अधूरे मैंने विलसत पुरी श्री रघुपते, रघुपत की जो पुरी है अयोध्या नगरी है, तो दूरे श्रीमन मधुपुरी श्रीमन मधुपरी पुरी एव सदृशी पुरी द्वारावती, और वहां से बहुत दूर द्वारकापुरी है। बैकुंठ में निकट तो है क्या, और वहां से बहुत दूर मधुपुरी जैसी ही पुरी द्वारकापुरी अवस्थित, निकट है अयोध्या, और वहां से अयोध्या से भी बहुत दूर है द्वारावती, और द्वारावती कैसी है, मधुपुरी के ही समान, मधुपुरी के समान है। ये सीप देखने में चांदी जैसी है, तो सीप चांदी है, समानता किस विषय में है, शैक्षिक ही तो समानता है। तो मधुपुरी यू माने क्या,
मधुपुरी मधुपुरी के जैसा है।
कैसी कुछ कुछ सादृश्य है, किंतु जो प्रेम का परिपाक है उसमें कुछ
मधुपुरी,
कुछ मधुपुरी का वो मधुपुरी है, और ये द्वारावती है। मधुपुरी में
ये बतलाया,
यद्यपि समस्त इंद्रियों का राजा मन है, और मन के अधीन जीवा एक इंद्रिय मात्र है, तो मन से किया जाने वाला कार्य भी सबसे उत्तम होना चाहिए था, और उसके अंग के रूप में जीवा है, तो ये कैसे उत्तम हो जाएगा। तो शास्त्र की बहुत सी युक्तियों के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया कि जितना भी ध्यान रहे वो कीर्तन की एक ही ध्वनि में कायने कहाँ मिल जाता है। शंकराचार्य जी संन्यास लिए, कितने वर्ष की उम्र में लिए, ऐसे ही 8-10 वर्ष की उम्र में उन्होंने ले लिया संन्यास। जब और कुछ प्रौढ़ हो गए, पढ़ो लिया गौड़पाद इत्यादि के निकट, कुमारी भक्ति इत्यादि को बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया, तो दंडक मंडली लेकर के अपने चेलों के साथ में शिष्यों के साथ में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में लगी प्यास, पर एक कुएं पर गए पानी पीने के लिए, तो पीने के लिए गए तो एक स्त्री पानी भर रही थी, जरा मुझे पानी पिला देगी, तो वो किशोरी नवयुवती थी, तो उसने पानी भरकर जिस बाल्टी से हो या जिस घड़े से पानी भर रही थी, तो उसी से करके पिलाने लगी, तो शंकर उसके तरफ मैं इसे देखने लगे, तो पूछी जी इधर क्या देखता है, पानी पियो तो इधर क्या चीज देख रहा है, नहीं वो देखने लगी, लड़की देखने लगी शंकर के तरफ में, और शंकर ने कहा ये तू पानी पिला रही है तो पानी क्यों नहीं पिलाती, हमारे तरफ में क्यों देखती है। तो उसने उत्तर दिया क्या, तू तेरे जैसा हमारा एक नौकर था, तो वो परसों से ही वो कहीं चला गया, मैं देख रही थी कि वही नौकर तो नहीं है, तेरे जैसा ही था कर लगा। बात बढ़ गई कुछ, तो शंकर ने कुछ देखा कि ये तो साधारण महिला तो है नहीं है, पढ़ी लिखी है, विदुषी है, तो शंख तो है नहीं थे नहीं ध्यान लगाने वाला। कालिदास ने इसका वर्णन किया है, उनके अंशांग का काव्य है तो उस लड़की ने बताया ध्यान ध्यान जो कर रहे हो हम लोगों के एक पायल पर तुम्हारा ध्यान में जिन्हें कहाँ उड़ करके खत्म हो जाएगा। कितने लोग विश्वामित्र सौभरि ऋषि और कितने लोग उर्वशी के एक पायल की रुंझन पर सब कुछ खत्म हो गया, वो ध्यान कहाँ गया। इसलिए यदि तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम का कीर्तन करो और वो कीर्तन करो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, उसने सिखलाया तो उसको सीख करके तब उन्होंने लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज अरे ध्यानियों मूढ़ मते तू ये क्या कर रहा, ध्यान लगा रहा ध्यान लगा रहा, ध्यान के बहाने न जाने किस चीज का ध्यान कर रहा है तू, गंदी गंदी चीजों का। वो नजने कहा थे अरे मूढ़ मते ध्यान क्रांति से कुछ नहीं होता, कोटि वर्ष ध्यान करने वाला व्यक्ति जहां पर दोनों आदमी खूब जोर से शोर कर रहे हो और मृदंग का धिक्तान धिक्तान भी चलाना, तुम्हें धिक्कार है तुम्हें धिक्कार है, जो धिक्तान जो ध्यान कर रहे हैं और कलयुग केवल नाम धारण नहीं कर रहे उनके लिए धिक धिक दे रहे हैं, जहाँ धिक धिक किया और ध्यान कार्य में कहाँ चला जाए। इसलिए कलयुग केवल नाम धारण नाम का की बड़ी महिमा है, ध्यान के चक्कर में मत पड़ना, भगवान नाम कीर्तन करना, ध्यान तो अपने आप आ जाए, पहले नाम इसके बाद में आएगा साथ साथ में रूप और इसके साथ में आएगा नाम रूप गुण और गुण के बाद में उनकी लीलाएं आएंगी और तुम्हें अपने आप बरस ध्यान में ऐसा लगा देंगे जो समाधि लग जाएगी। कैसी समाधि लगेगी, समाधि दो प्रकार, एक संप्रज्ञात एक असंप्रज्ञात, एक में होता है सहज समाधि। सबसे बड़ी समाधि जानते हैं कौन है, सहज समाधि, आंखें खुली हो बात कर रहे हो और समाधि लगी हो। एक होता है ऐसे जोर करके समाधि लगा रहे हैं और मन बार बार इधर उधर जाता है उसको पकड़ कर उसे लाते हैं, ये एक समाधि है। और सहज समाधि है बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं किंतु मन उधर ही है लगा हुआ एकदम, जैसे श्रीमती राधिका जी भ्रमर को दूत मान करके उससे बातचीत कर रही है किंतु है क्या वो, है होश में है, होश में कोई भी गोपी होश में नहीं है और लोग कहेंगे तो हंस रही है बोल रही है खा रही है पेश कर रही है श्रृंगार कर रही है, किंतु वो एकदम सहज समाधि में है जिसको नारद जी जैसे व्यक्तियों को दिए थे सहज समाधि और गोपियों को चुटकी बजाते हैं सहज समाधि लगी रहती है, सहज समाधि को छोड़ना चाहती है किंतु वो सहज समाधि छूटती नहीं, ऐसी समाधि है। वैष्णव लोग की समाधि का उद्देश्य यही समाधि है, सहज समाधि। इसलिए ध्यान ध्यान के तरफ में खबरदार मत जाना, सहज समाधि की तरफ में, और नहीं लगे समाधि जब तक तब तक हरे कृष्ण करो, राधे 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 जय जय श्री राधे, यही सब महाप्रभु ने जो जो बतलाया है कीर्तन, हरि हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय, वो जो कुंज कुटीर ये अभी मत करना, अभी अभी ये सब कीर्तन मत करना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ये कौन कहेगा, अरे जिसका हो गया अभी हुआ ही नहीं, बेटा हुआ ही नहीं, और सोहबत की गीत गाने लग गए पहले ही। इसलिए ये कीर्तन समय के अनुसार में विशेष विशेष भक्तों के द्वारा कभी कभी हो, केवल उद्दीपना के लिए। और अभी कहो वो भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थनाएं, ऐसे ऐसे कीर्तन कर किया जाए जैसे कि कल है। और सवेरे का सूर सवेरे का सूर हो, शाम का सूर शाम का, नहीं तो तंगड़ी लंगड़ी हो जाती है। एक बार नारद जी को ऐसे ही सब कुष्ठ व्याधि हो गई, गान कर रहे थे उनका बस ऐसे हो गया। तो इसलिए ये सुन करके जो जानते हैं उनके अनुगत्य में कीर्तन भी प्रार्थना मूलक सब समय करने की चेष्टा की। सिद्धों का नहीं, सिद्धों का ये सब कीर्तन जो है राधा कृष्ण प्राण मोह, ये कौन कहेगा? कौन जिसको हो गया वो ना। और ये राधा हाँ, ये सब छाड़ो तो प्राण हराम, ये सब छोड़ो तो प्राण हराम,
कहीं नहीं जाओ ये सब छोड़ो तो प्राण हराम।
तो आप तो अभी तो कहीं नहीं जाएंगे ना, और जहाँ छोड़ेंगे तो प्राण छूट जाएगा कि नहीं, छूट जाएगा कि नहीं, अभी नहीं छूटेगा। तो इसलिए समझ बुझ करके कितना हम लोग करें ऐसा जिसके हम अधिकारी। कभी कभी वैष्णव के कहने से ये सब उत्पन्न, और बाकी सब नरोत्तम ठाकुर के, भक्ति प्रेमानंद के, भक्ति विनोद ठाकुर जी के, और सब जो कीर्तन है
गोविंद दास,
गोविंद दास जी का अजहरी मन सी नंदन नंदन अभय चरण अरविंद, और सब कीर्तन है। पार्थक एखन इत्यादि गोरा पहु नाभ जिया मैं प्रेम रतन धन, ऐसे सब कीर्तन। और उसमें जो प्राचीन वैष्णव है वो लोग गाएंगे, क्योंकि वो तो गाते हुए आ रहे हैं बहुत कीर्तन किया है, और कुछ अंदर में कुछ लालसा जगी है, और नवीन भक्तों को नवीन कीर्तन प्रार्थना मूलक इत्यादि करता है। और सुस्वर से हो, इधर उधर न हो जाए। तो हम लोगों का चल रहा था वैकुंठ में, दोनों की बातें अभी ध्यान के समय में वो बातें पीछे हुई थी, इसलिए प्रसंग वस्त्र मैंने कह दिया। तो चल रहा था बात कि वैकुंठ में इनको अच्छा ही नहीं लग रहा, और वो समझा वैकुंठ में तो सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको देख करके कुछ दया आ गई, तो उन्होंने बतलाया तुम्हारे अंदर में स्वरूपतः कुछ ऐसा छिपा हुआ प्रेम है जो भीतर में तुम्हारे है, अभी प्रकटित नहीं हुआ है, इसलिए तुमको वो चीज प्रेम यहाँ नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसलिए तुमको अच्छा नहीं। ये वो प्रेम प्रभु विशेष लोगों के अतिरिक्त साधारण लोगों को उनको दिया करते हैं, जिस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उन्हीं को देखते हैं। विशेष करके वो चार प्रकार की, एक प्रकार की मुक्ति देते हैं शारीरिक की, और पिंड छुड़ा लेते, यदि नहीं मानता है तो चार प्रकार की मुक्ति देकर के बैकुंठ में ले जाए। सारुक्य, सालुक्य, सामित्य और सस्य। इससे भी संतुष्ट नहीं होता तो ये मुक्तियां जो चार प्रकार की हैं बैकुंठ वाली, ये सुख ऐश्वर्य उत्तरा है बैकुंठ वाले। और बैकुंठ के ही अपर भाग में जो राम इत्यादि का लोक है वहां पर प्रेम सेवा उत्तरा है, प्रेम सुख उत्तरा है, प्रेम हनुमान जी वहां पर प्रेम से, हनुमान जी प्रेम पर भक्त हैं, इसलिए वहाँ पर उस सेवा में भी प्रेम देते हैं, किंतु दुर्व्रत है इनमें और उससे भी, किंतु इसमें कुछ ऐश्वर्य है, माधुर्य प्रेम उत्तरा जो भक्ति है ये बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, ये इसके लेने वाले जगत में बहुत कम है, उनको कम है। इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति स्प्रिहा युक्त, जिसमें स्प्रिहा लालसा हो वो लोक व्यवहार के अतीत किसी महान आदर्श पुरुष को ही प्रभु वो दिया करते हैं, दूसरे को नहीं दिया करते। हम लोग भी उस परिपाक जो भक्ति का प्रेम का परिपाक हो जाता है उसके लक्षणों को व्यक्त नहीं करते, शास्त्रों में भी नहीं व्यक्त है, ये उस दिन बतलाया, और व्यक्त करने से उसका उल्टा फल हो जाता है। उसमें मान क्यों होता है, गोपियों में परस्पर ईर्षा द्वेष क्यों हो जाता है, इसलिए अनाधिकारी लोग इसको नष्ट करते और उसे नहीं कहा गया, व्यक्त नहीं किया गया उस प्रेम के संबंध में। यदि कोई करता है तो अनाधिकारी लोगों का अनर्थ हो जाता है, इसलिए उसे नहीं कहा गया है। तो जो इसके रसिक लोग हैं प्रेम के, वही लोग इसको जानते हैं, किंतु वो कहते नहीं। ये स्वयं संवेद्य दशा है, अपने आप भजन के प्रभाव से समझा जा सकता है। तुम भी इसके परिकर हो उस प्रेम के, तुम भी इसको समझोगे और तुम भी वहां जाओगे अपने इष्ट देव के पास, तुम्हारे इष्ट देव मदन गोपाल जी हैं, तुम वहां जाएगा और अपने आप तुम समझोगे, जिस चीज को हम भी नहीं जानते हैं उस चीज को तुम समझ जाएगा। इस पर सुनकर के गोल कुमार जी के हृदय में उत्कंठा जगी, ये अब हम हमारे इष्ट गोपाल देव जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो तो रहते हैं ब्रज में, तो ब्रज में जाने के लिए बड़े उत्सुक हो गए, किंतु उनकी ये दर्शन की लालसा तादृक भाव विशेष विशेषाशा बात्या अपि अजनी तत्क्षणा, उनको वहां जाने की उत्कंठा तत्क्षणा जागृत हो गई। और नारद जी ने उसे देखा, देख करके उनको सांत्वना दे करके बोले, जाने की तो इच्छा है, जाएगा कैसे, जाने का पथ तुमको मालूम है, मार्ग कहीं जाने की इच्छा करने से नहीं होगा, उसका मार्ग जानना चाहिए, मार्ग जानता है वहां जाने का, और जाने के कुछ नियम होते हैं। हम बंबई जाएंगे एरोप्लेन से, टिकट नहीं लेंगे, समय पर टिकट नहीं लिया, जानते नहीं है ये कैसे जाया जाता है, कोई अभिज्ञता नहीं है, तो हो जाएगा ऐसे ही यहीं पर बैठ करके तुम्हारे लिए एरोप्लेन आ जाएगी और तुम यहाँ से चढ़ करके चला जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया मार्ग और सब चीजों को अपने पुरुषों से जानना चाहिए। उन्होंने पूछा तो नहीं, समझा जाए पूछने योग्य भी अभी नहीं है, इसलिए अपने आप उसको बताना कैसे जाया जाता है, मार्ग कैसा है। नारद उवाच, जब एतन महागोप्यम विद्यते नात्र खल्जल, यद्यपि यह बात बहुत ही गोपनीय है और वैकुंठ में इसका इसको प्रकाश करना भी उचित नहीं मैं समझता, तथापि तो तुम्हारी ये दशा देख करके, कातरता देख करके, उत्कंठा देख करके मैं तुम्हें ये बोलने के लिए बात करूँगा, तो सावधानी के साथ सुन। जाने का एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। क्या मार्ग है, यहां से थोड़ी दूर अयोध्या है, और अयोध्या वहां पर भगवान रामचंद्र जी वहां पर विराजमान है, बड़े दयालु हैं, और वहां से बहुत दूर द्वारकापुरी है, मथुरापुरी के समान ही है, दोनों में अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि जदुपुरी में, मथुरापुरी में जो जो जादव थे, उग्रसेन, अक्रूर, उद्धव, सात्यकी और जितने भी जादव थे और ऋषि महर्षि पुरोहित ब्राह्मण जो गर्गाचार्य इत्यादि थे वो लोग, और मथुरा के जितने बनिए लोग थे वो सभी लोग, और दूसरी जो जातियों के लोग जो मथुरापुरी में थे, एक ही रात में सबको उठा करके लेकर के चले गए। उनको पता भी नहीं चला, सोए हुए स्थिति में सबको ले लिया, मथुरापुरी यहीं पर छूट गए, रह गए। और वहां पर मथुरापुरी से भी लाखों गुण सौंदर्य युक्त, तरह तरह की सुंदर सुंदर उपवन वन और क्या क्या चीजें सब जो आधुनिक नगर में होना चाहिए वो सबसे युक्त बड़ी सुंदर वहां पर बसी। और देखा जाए एक एक राजभवन में ये लोग सब सोए पड़े हैं। जब रात में उठे सवेरे, हम लोग कहाँ आए, देखा इंद्रपुरी में आ गए, नजे कहाँ आ गए। फिर धीरे 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 उन्होंने देखा, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, पार्क बने हुए हैं, पार्कों में अच्छी अच्छी चीजें हैं, और सुंदर सुंदर राजभवन जिस पर चित्र हैं हंस के, तो हंस आ रहे हैं उनसे जैसे वो हमारी ही जाति के, मयूर जो बने हुए हैं वो असली मोरों से भी ऐसे मालूम होते हैं कि सुंदर हैं, ऐसी चित्रकारी विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो वहां पर सभी लोग पहुंच गए, तो मधुपुरी ही तो वहां है ना। थोड़ी सी बात ये हुई कि वहां पर कृष्ण की और जादुओं की शादियां, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और सब रानियां वहां आई, इसीलिए कोई अंतर नहीं। कृष्ण के प्रति जिनका जो भाव था वही था, केवल तो रानियां जो नई आई उनकी कृष्ण में पतियों की भावना वहां पर आई, और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र ये सब लड़कियां और सब उनकी शादी विवाह इत्यादि हुई। इसलिए जदुपुरी भी मथुरापुरी की तरह ही है, यहाँ जमुना है और वहाँ महासमुद्र है, सभी एक तरह का है। यहाँ का पानी भी खारा और द्वारका का पानी भी खारा, यहाँ पर भी बहुत नीचे पानी, वहाँ पर भी।
यमुना जी का पानी तो खाली नहीं है,
यमुना जी का तो नहीं है, किंतु कुछ तो विशेषता रहेगी ही, सब तो इतना ही होगा, किंतु वहाँ का पानी भी खारा है। बहुत कुएं खोदने पर बहुत से बहुत कम ऐसे होते हैं बहुत गहराई पर थोड़ा सा मीठा पानी, और जैसे यहाँ पर पेड़ों में वो क्या होता है तेती के, तो वैसे वहाँ पर भी है। कुछ कुछ बातों में समानता भी है, कुछ कुछ बातों में असमानता भी है। वहाँ भी ऐश्वर्य है, यहाँ भी ऐश्वर्य है, किंतु यहाँ पर माधुर्य कुछ है, वहाँ पर माधुर्य है किंतु अधिक मथुरा की अपेक्षा कम है। तो वो कारण मधुपुरी के पास ही में है, मथुरा से द्वारकापुरी दिखती है और एक समान है। कहीं कहीं पर लिखा गया है सूरसेन का जो राज्य है उसके अंतर्गत में वो द्वारकापुरी, अथवा कुशस्थली के अंतर्गत मथुरा से लेकर के द्वारका तक और सिंध नदी के किनारे तक सब कुशस्थली के अंतर्गत है, इसलिए भी इसको कहा। किंतु विशेष करके ये कहा जो अयोध्यापुरी यहाँ से थोड़ी दूर है, और द्वारकापुर यहाँ से कहाँ से बैकुंठ से बतला है, बहुत क्यों कहा इसका स्थान के का ये वहाँ पर नहीं है दूरी, भावों की दूरी है। वहाँ तो मन से करते पहुँच जाते, एक मिनट समय नहीं लगता, इसलिए स्थान की दूरी नहीं, भावों की दूरी। दो आदमी एक साथ में बैठे हैं, अब विरोधी भाव के हों तो बहुत दूर है, अब बहुत दूर रहने पर भी दोनों के भाव एक समान सम हो तो बहुत निकटता है। इसलिए अब देखेंगे कि बैकुंठ से मथुरापुरी, बैकुंठ से अयोध्यापुरी निकट क्यों है? इसलिए है कि दोनों में दास रस प्रधान है, किंतु दोनों के दास में कुछ थोड़ा सा वैशिष्ट्य है। बैकुंठ में जो दास है वो कुछ सनत संदन सनत कुमार के शांत रस के साथ में मिला हुआ रहता है, उसके निकटता है, और अयोध्या वाला जो है वो सख का कुछ थोड़ा सा भाव मिल करके रहता है, थोड़ा सा या शुद्ध सख रहता है, अधिकांश में शुद्ध दास रहता है ने? तो यहां पर भी दास है नारद इत्यादि जितने ऋषि महर्षियों का ने? ब्रह्मा इत्यादि अधिकृत दास हैं, ये बैकुंठ से संबंधित है। यहाँ के जय विजय इत्यादि ये सब दास हैं, विश्वक्सेन दास हैं, बैकुंठ के नारद जी भी दास हैं, लक्ष्मी जी भी दासी हैं। यहाँ पर सब समय हाथ जोड़े हुए रहेंगे ने? और उनके आज्ञा की प्रतीक्षा करेंगे, और नारायण सब समय इसी रूप में इसी मुद्रा का अतिरिक्त कोई दूसरी मुद्रा नहीं रहेगी। इसका मुद्रा का मतलब क्या?
अभय,
तुमको अभय देता। अभय किस लिए? अब जन्म मरण का कोई दुख नहीं है, यहाँ पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब अभय है। और रामचंद्र जी का क्या है? वहां पर दशरस में नारायण किसी के कंधे पर नहीं चढ़ेंगे, वो चढ़ेंगे तो किस पर? गरुड़ पर, परिकरों के बस एक परिकर। और कभी भी उनका जन्म लीला नहीं होगा नारायण की, रामचंद्र जी की जन्म की लीला भी है। और वहां का दासरस ऐसा है जो रामचंद्र जी स्पष्ट रूप में उनसे बहुत प्रीति रखते हैं, निकटतम का व्यवहार। रामचंद्र जी जिस प्रकार से बंदरी सेना में खाली पैर और दुखों को कष्टों को सहते हुए घुमा और लोगों का चित्त आकर्षण किया, ऐसा नारायण की लीला में नहीं है। तत्वतः राम में और नारायण में कोई अंतर नहीं, एक ही है, किंतु लीला का कुछ वैशिष्ट्य। किंतु दास्य भाव उनमें भी है, दास्य भाव उनमें भी है, उनमें कुछ बात्सल्य और सख्य का आधा भाव रामचंद्र में, इनमें दास्य के अतिरिक्त सख्य और बात्सल्य का कोई भाव नहीं, इतनी थोड़ी सी विशेषता दोनों में है। किंतु अयोध्या का बात्सल्य भी और सख्य भी वो कृष्ण ही के लीला है, किंतु उसमें दास्य रस की प्रधानता है। जैसे सुग्रीव से मिताली होने पर भी, विभीषण से उनकी मिताली मित्रता होने पर भी ये लोग उनके दास थे, सीता जी भी उनकी दासी हैं, वो सीता जी का कहना नहीं चलेगा, चलेगा किसका? रामचंद्र जी का कहना चलेगा। परामर्श दे सकती हैं, रामचंद्र जी मानने के लिए कोई बात है नहीं। यहां पर सीता जी रो रही हैं, कलप रही हैं, और जानते हैं कि इनका दुख होगा, उनके हृदय में प्रीति भी है। जिस समय लक्ष्मण जी सीता को छोड़ करके वन में आए वाल्मीकि के आश्रम में, छोड़ करके आए ना, और रामचंद्र जी से कहने लगे रोते रोते, पहले तो मुंह छिपा करके वो आए नहीं राम के पास में, और जब आए भी तो रोने से घी बंद गई तो कुछ कह ना सके उनके साथ। उस दिन से रामचंद्र जी खाना पीना छोड़ दिया। क्या खाते कल्पना करके देखते जो सीता जी ये खा रही होगी, और पलंग पर सोते थे कि नहीं, पलंग पर सोना छोड़ दिया। केवल सीता जी जैसे वहां पर बेतों से बनी हुई, अपने हाथ से बुनी हुई, या ताड़ के पत्तों से जो चटाई इत्यादि बनाई जाती है, या घास फूस से बनी हुई जो सज्जा होती है, ऐसे बना दिया, और उसी पर अपने घर में महल में तपस्या के साथ में, बल्कि वन में सीता जी के साथ में आनंद के साथ में रहते थे। किंतु आज सीता जी के बिना इस महल में बिच्छू, करोड़ों बिच्छू उनको डस रहे हैं, काट रहे हैं, इस प्रकार से वहां पर बिता रहे हैं, फिर भी इनको वनवास दे। और सीता जी ने भी पति की आज्ञा मानकर उसको सह लिया। बैकुंठ में ये लीलाएं नहीं है, इसलिए किंतु थोड़ी दूर इसलिए कहा कि उसमें भी दास्य है, इसमें भी दास्य है, बस इसलिए।